रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, जिससे कैश रेट 3.6% से बढ़कर 3.85% हो गया है। ये पहली बार है जब केंद्रीय बैंक ने 2 साल से अधिक समय में दर बढ़ाई है। नवंबर 2023 में इसे 4.10% से बढ़ाकर 4.35% किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के बिग फोर बैंक और कई अर्थशास्त्रियों ने दर बढ़ने की उम्मीद जताई थी, क्योंकि पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों में मुद्रास्फीति बढ़ी दिखी। $6,00,000 के औसत लोन पर आरबीआई बोर्ड के इस फैसले का मतलब है कि न्यूनतम मासिक किस्तों में लगभग $90 की बढ़ोतरी होगी। विपक्षी नेता सुजैन ली ने इस सप्ताह कॉलिशन को फिर से एकजुट करने की पेशकश की है, इस शर्त पर कि हेट स्पीच कानूनों पर पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने वाले 3 सेनेटर 6 महीने तक बैक बेंच पर बने रहें। सुजैन ली ने कहा कि कल रात नेशनल्स नेता डेविड लिटिल प्राउड के साथ हुई बातचीत सकारात्मक रही और उन्होंने अपने नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह के खतरे को खारिज किया। नए पार्लियामेंट्री सिटिंग वीक की शुरुआत के मौके पर आयोजित एक मल्टी डिनोमिनेशनल चर्च सर्विस के बाहर बात करते हुए सुजैन ली ने नेशनल्स के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने को लेकर भरोसा जताया। न्यू साउथ वेल्स में नए नियमों के तहत ऐसे शिक्षक और प्रिंसिपल जो हेट स्पीच में शामिल होंगे उन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है। राज्य सरकार ने कहा कि ये नीति आज यानी 3 फरवरी से लागू हो रही है और इसके लिए किसी कानून या रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं है। इन बदलावों से सरकारी, स्वतंत्र और कैथलिक स्कूलों के सभी स्टाफ के कोड ऑफ कंडक्ट पर असर पड़ेगा और ये न्यू साउथ वेल्स एजुकेशन स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को अधिकार देता है कि नियम उल्लंघन की स्थिति में किसी स्कूल को स्टाफ के सदस्यों को नौकरी से हटाने का निर्देश दे सके। प्रीमियर क्रिस मिंस ने कहा कि ये बदलाव उन मामलों के बाद आया है जब कुछ प्रमुख शिक्षक या प्रिंसिपल पर हेट स्पीच का आरोप लगा था, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने कहा है कि राज्यों और क्षेत्रों ने सरकार के थ्राइविंग किड्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जो माइल्ड डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। यह समझौता शुक्रवार 30 जनवरी को नेशनल कैबिनेट की बैठक में हुआ, जहां फेडरल और राज्य एवं क्षेत्रीय सरकारों ने अस्पतालों के लिए फंडिंग डील को अंतिम रूप दिया। जुलाई से लागू 5 साल के इस समझौते के तहत फेडरल सरकार सार्वजनिक अस्पतालों के लिए अतिरिक्त $25 बिलियन प्रदान करेगी। राज्य और क्षेत्रीय सरकारें NDIS जैसी विकलांगता सेवाओं की लागत का अधिक हिस्सा उठाएंगी, साथ ही थ्राइविंग किड्स कार्यक्रम के लिए $2 बिलियन का योगदान देंगी। ये कार्यक्रम अक्टूबर में शुरू होगा, यानी तय तारीख से 3 महीने की देरी से। मिनियापोलिस में फेडरल इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एजेंट्स के लिए बॉडी कैमरा तैनात किए जाएंगे और जैसे जैसे फंडिंग उपलब्ध होगी ये कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया जाएगा। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोयम ने कहा कि उनके विभाग द्वारा फील्ड एजेंट्स के लिए बॉडी कैमराज तुरंत प्रभावी किए जा रहे हैं। ये घटना पिछले महीने मिनेसोटा में इमिग्रेशन एजेंट्स द्वारा 2 US नागरिकों की हत्या के बाद आइस के ऑपरेशंस की व्यापक जांच के बीच हुई। इन हत्याओं के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एजेंट्स का बचाव किया ये कहते हुए कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में कार्रवाई की थी। और अब खबर भारत से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा की है कि भारत और अमेरिका एक ट्रेड डील पर सहमत हो गए हैं। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पोस्ट साझा करते हुए इस घोषणा के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप का धन्यवाद किया और कहा कि वो भारत के लोगों की ओर से इस फैसले के लिए आभार व्यक्त करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद करने और अमेरिका तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमति जताई है। उनका कहना है कि इससे यूक्रेन में जारी युद्ध को ख़त्म करने में मदद मिलेगी, जहां हर हफ्ते हजारों लोगों की जान जा रही है। यह था आज का न्यूज फ्लैश, नबील हसन के साथ।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें, SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305 SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।